Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
तीन गुना ज्यादा है भाई, कपड़े के सत्ता के समय तो उसका सत्ता ही है, जिस समय कपड़े का सत्ता नहीं था और नहीं रहेगा उस समय भी उसका सत्ता है, इसलिए धागा कपड़े का अधिष्ठान है, धागा कपड़े में कपड़ा धागे में अध्यस्त है और धागा कपड़े का अधिष्ठान है, कपड़ा धागे में अध्यस्त है। योनिम योनिम जितनी भी योनियां हैं वे सब जिसमें अध्यस्त हैं, जिसमें सिद्ध हैं, जिसमें प्रतीत हो रहे हैं, जिसमें अस्तित्ववान हैं। आपका अस्तित्व कहां है? आपका माने जीवात्मा का अस्तित्व कहां है? जीवात्मा के अस्तित्व से ज्यादा अस्तित्व जो है वही जीवात्मा का अधिष्ठान है। जिस समय अविद्या से संबंध नहीं हुआ था उस समय भी उसकी सत्ता थी, और जब ये अविद्या का संबंध हट जाएगा उस समय भी उसकी सत्ता रहेगी। तो बीच में अविद्या के संबंध से जीव 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 हुआ है, ये अधिक जीव जीव अनेक हैं फिर भी बहुत बहुत छोटे हैं, बहुत क्षुद्र हैं, बहुत तुच्छ हैं। परमात्मा एक है फिर भी वह महान है, जीवात्मा अनेक हैं फिर भी वह क्षुद्र हैं उसके सामने। परमात्मा अकेले है फिर भी वह समर्थ है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब मिलकर एक साथ अपनी शक्ति लगाएं, अपनी ताकत लगाएं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो अकेले संकल्प मात्र से सब कुछ कर पाता है। तो इसीलिए उस परमात्मा को अधिष्ठान कहा है। योनिम योनिम दो बार योनि पद का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि योनियां अनेक हैं। आप लोगों ने सुना ही है उद्विज्य स्वेदज अंडज और पिंडज, 84 लाख योनियां हैं, और इन 84 लाख योनियों को जो कि चैतन्य जीवन है, चैतन्य जगत है, 84 लाख योनियों को वेदांत दर्शन ने समझने के लिए चार वर्ग में विभक्त किया है। 84 लाख योनियों को समझने के लिए दर्शन शास्त्र ने, वेदांत दर्शन ने चार वर्ग में विभक्त किया है। उद्विज्य योनि, और एक उद्विज्य योनि के अंतर्गत अनेक योनियां हैं। उद्विज्य योनियों का एक संजाल है। स्वेदज योनि, एक स्वेदज योनि, स्वेदज योनि के वर्ग के अंतर्गत अनेक योनियां हैं। अंडज, अंडज योनियां हैं लेकिन उन अंडज योनि के अंदर अनेक वर्ग हैं, असंख्य वर्ग हैं। शास्त्र ने वर्णन किया है कितने लाख योनियां हैं। पिंडज, पिंडज योनि के अंतर्गत कितनी कितनी कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। पिंडज के अंतर्गत मनुष्य है, पिंडज के अंतर्गत भैंस है, पिंडज के अंतर्गत गाय है, पिंडज के अंतर्गत कुत्ता है, कुंडज के अंतर्गत बिल्ली है, ये सब पिंडज हैं। पिंडज के दृष्टि से यदि देखा जाए तो मनुष्य पशु पक्षी सब एक ही कोटि में, पशु आदि जितने भी हैं सब एक ही कोटि में आते, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े नहीं आएंगे। तुम्हारी सजातीयता है गधे के साथ, क्योंकि गधा भी पिंडज है, तुम भी पिंडज हो। तुम्हारी सजातीयता है घोड़े के साथ, क्योंकि घोड़ा भी पिंडज है, तुम भी पिंडज हो। तुम्हारी सजातीय कुत्ते के साथ, क्योंकि कुत्ता भी पिंडज है, तुम भी पिंडज हो। तुम्हारी सजातीयता है बिल्ली के साथ, क्योंकि बिल्ली भी पिंडज है, तुम भी पिंडज हो। कितने कितने, चूहा भी पिंडज है, चूहा अंडज नहीं है, पिंडज है। ये सब कितनी वर्ग हैं, कितनी वर्ग हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखना, जितनी भी वर्ग के योनियां हैं वो सबका अधिष्ठान एक है, उन सबका अधिष्ठान एक है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्ते कह, जितने भी मुंबई में मकान हैं, चाहे वह 40 माले के हों, चाहे 60 माले के हों, चाहे एक तले का हो, सभी मकान अलग अलग हैं, परंतु उन सभी मकान का अधिष्ठान एक ही है। उन सभी मकान का अधिष्ठान क्या है? मृत्यु, पार्थिव। मकान तो बाद में बने हैं और बिगड़ेंगे, लेकिन पार्थिव, न ईंट बिगड़ेगा, न ईंट की मिट्टी बिगड़ेगी, न सीमेंट की मिट्टी बिगड़ेगी, है न बालू की मिट्टी बिगड़ेगी, न लोहे की मिट्टी बिगड़ेगी। लोहा बिगड़ेगा तो मिट्टी, सीमेंट बिगड़ेगा तो मिट्टी, बालू बिगड़ गया तो मिट्टी, ईंट बिगड़ गया तो मिट्टी। तो मिट्टी की सत्ता सभी की सत्ता से ज्यादा होने के कारण सभी का अधिष्ठान क्या हुआ? मिट्टी, पार्थिव। यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्ते को, यह एक जो अकेला है, परंतु अनेक योनियों का वह अधिष्ठान है। अधिष्ठान शब्द का अर्थ होता है आधार, अधिष्ठान शब्द का अर्थ होता है जिस पर जो टिकते हैं वो अधिष्ठान। सभी योनियां उसी पर एक पर टिके हुए हैं। तुम्हारी श्वास और मेरी श्वास एक ही हवा है, ये नहीं है कि तुम जीने के लिए तुम्हारी श्वास दूसरी है और हमारी श्वास अलग है, ऐसा नहीं है। दोनों का जो मूल हवा है वो एक ही है। तुम्हारे हृदय को धड़कन कराने वाला और मेरे हृदय को धड़कन कराने वाला, वो हृदय सम्राट एक ही है। ये नहीं कि तुम्हारे हृदय को कोई और स्पंदित कर रहा है और मेरे हृदय को कोई और स्पंदित कर रहा है, एक ही है, वो वही स्पंदन कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है वेदांत समझने के लिए। विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वः, तीन बार योनि पद का प्रयोग हुआ है इस मंत्र में। यहां जो योनिश्च सर्वः जो कहा गया है वह विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वः, सारे विश्व रूप का वह योनि है, कारण है, अधिष्ठान है। तो योनि को कहीं तो अधिष्ठान के रूप में लिया गया है, परिभाषित की गई है, कहीं कारण के रूप में, कहीं अधिष्ठान के रूप में, कहीं सत्ता के रूप में। उपनिषद में, छांदों के उपनिषद में, या प्रतिब्यम तिष्ठन पृथिवी यस्य शरीरम, पृथ्वी यम न विदुः, अंतर्यामी ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण का प्रसंग आता है, जो पृथ्वी में रहता है और पृथ्वी को यमन करता है। पृथ्वी जिसका शरीर है, परंतु पृथ्वी जिसको नहीं जानती, जो पृथ्वी को जानता है, ये देख लो वही अधिष्ठान है। जो पृथ्वी को जानता है, लेकिन पृथ्वी जिसको नहीं जानती, पृथ्वी उसका शरीर है, शरीर के मतलब अभिव्यक्ति का माध्यम है। पृथ्वी के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होगा, सूर्य के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होगा, लकड़ी के बिना अग्नि प्रकट नहीं होती है जिस तरह, ईंधन के बिना अग्नि प्रकट नहीं होती है जिस तरह, किसी न किसी उपाधि, किसी न किसी आलंब हुए बिना अग्नि का दाहकत्व की प्रतीति नहीं हो सकती। शुद्ध अग्नि कभी भी दाह नहीं कर सकती, और शुद्ध अग्नि जो कोई उपाधि कोई आलंबन बिना की जो अग्नि है, उसकी उष्णता का अनुभव तुम कर ही नहीं पाओगे। उस जैसे कि पावर हाउस से प्रवाहित होने वाला जो पावर है, बिजली है, उस बिजली के अनुभव करने के लिए कोई न कोई वायर होने ही चाहिए, कोई न कोई बल्ब होना चाहिए, कोई न कोई यंत्र होना चाहिए, कोई न कोई उपाधि होना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगी बिजली है? बल्ब जब जलता है तब पता चलता है कि बिजली है। आपको कैसे पता चले कि बिजली है? टीवी का प्रोग्राम जब दिखते हैं तब पता चलता है कि बिजली है। आपको कैसे चले कि बिजली है? जब पानी गर्म होता है, जब मशीन यंत्र चलते हैं, इन सब के बिना बिजली ये है करके आप क्या अनुभव करोगे? इसलिए बिजली न ठंडा है न गर्म है। बिजली न ठंडा है न गर्म है। यंत्र गर्म करने का है तो गर्म हो जाएगा, यंत्र ठंडा करने का है तो ठंडा कर लेगा, ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा गर्म, ये आवाज जो कुछ भी है बिजली के माध्यम से, बिजली में ये कुछ भी नहीं है लेकिन बिजली के माध्यम से सब कुछ है, उसी को तो कहते हैं अधिष्ठान। बिजली की बात की तो उसने आग झिमका ली, वो खुश हो गया होगा ना, प्रसन्न हो गया, मेरी चर्चा कर रहा है, ब्रह्म के साथ मेरी तुलना कर रहा है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि, आश्चर्य की बात है, वो एक होता हुआ भी वो अनेक रूप है। विश्व शब्द का अर्थ होता अनेक, विश्वानि रूपाणि, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुश्च, ये तो उपनिषद का मंत्र है। तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, वो अंदर भी बैठा है बाहर भी बैठा है, वो हर रूप उसी का है, और हर रूप में वह अधिष्ठान के रूप में सत्ता और प्रकाश के रूप में विद्यमान है। वो न होता तो न दिखते वस्तु, वो न हो तो वस्तु न दिखे, इसलिए उसके प्रकाश से सब प्रकाशित हुए हैं। वो न हो तो वस्तु ही सिद्ध न होते, इसलिए उसकी सत्ता से सत्तावान हुए हैं। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, यह जिसने सृष्टि के आदि में कपिल ऋषि को पैदा किया, यह मंत्र एक विशेष। अब ये उपनिषद पहले है कि भागवत पहले है? भाई भागवत में कपिल भगवान के जन्म की अवतार की चर्चा आई है, और उस कपिल की जो भागवत में चर्चा आई है तो ये उपनिषद ने जो पहले कहा है उसी का ही अनुवाद है। कपिलम ऋषिम प्रसूतम कपिलम, कपिलम ऋषिम, कपिल ऋषि को प्रसूता पैदा किया उसने, यस्तद तम अग्रे, अग्रे आदि में संसार में जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनि तो केवल पृथ्वी की योनियां हैं। संसार में जो 84 लाख योनियों की बात हो रही है, ये 84 लाख योनियां तो केवल पृथ्वी की योनियां हैं। और ऐसे पृथ्वी जैसे कितने मंडल हैं, कितने लोक हैं, और उन लोक में, उन मंडलों में रहने वाले जीवों की तो यहां गणना ही नहीं है इन योनियों 84 लाख के अंतर्गत। जितनी योनियां यहां हैं उतनी योनियां देवलोक में हैं, उतनी योनियां पितृलोक में हैं, उतनी योनियां गंधर्व लोक में हैं। लेकिन उन योनियों को तो यहां चर्चा ही नहीं 84 लाख योनि के अंतर्गत। उससे भी ज्यादा कितने हैं, कितने हैं? बोलो, आखिर वो भी पैदा हुए हैं। लेकिन ये सब देव, असुर, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी, कीट, पतंगा, उद्भिज्य, स्वेद, जंडज, पिंडज, इन सब जितने भी प्रकार के योनियां पैदा हुई हैं, इन सब से पहला कपिल पैदा हुए हैं। परमात्मा ने सबसे पहले कपिल को बनाया। यह कपिल शब्द का अर्थ कपिलम हिरण्यगर्भ। कपिल ये रंग, कपिला ये कलर का नाम है। कपिल सोने का जो कलर है उसको कपिल कलर बोलते हैं। तब हिरण्यगर्भ सारे के सारे जीवों को उत्पन्न करने से पहले उस परमात्मा ने संकल्प के माध्यम से कपिल ऋषि को प्रसूत किया, माने पैदा किया, उत्पन्न किया। कौन से कपिल को? तो बोलते हैं हिरण्यगर्भ को, क्यों? माने अग्रज हिरण्यगर्भ है। और ये बात वेदांत ने जगह जगह कही है हिरण्यगर्भ के लिए। सवई प्रथम शरीर ही जीव संज्ञा होने से सबसे पहले वही हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। समष्टि कारण उपाधि वाला हिरण्यगर्भ। हम लोग तो व्यष्टि कार्य उपाधि वाले हैं, हिरण्यगर्भ समष्टि कारण उपाधि वाला है। और उस हिरण्यगर्भ से ही, यानी उसी कपिल से सारे सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसी हिरण्यगर्भ से सारे सृष्टि का विस्तार हुआ है। प्रसूतम कपिलम ज्ञानेर विवर्ती, देखो उसको परमात्मा ने उत्पन्न करके ज्ञानेर विवर्ती ज्ञान से पूर्ण कर दिया हिरण्यगर्भ को। इस मंत्र से ये निश्चय हुआ, आप अपने बच्चों को पैदा करते हो तो आप उसका जनक बनते हो, जननी बनते हो। तो जनक और जननी का कर्तव्य ये होता है कि जन्य संतति को ज्ञान से पूर्ण करो। अपनी सारी नॉलेज, अपनी सारी जानकारी उनको दो। आज तो ये हुआ है, संस्कृति ये बन गई है, बाप अपने बेटे को शिक्षा दीक्षा नहीं देता, पैदा करता है लेकिन शिक्षा दीक्षा नहीं देता है। और शिक्षा दीक्षा देने के लिए दूसरे के पास भेजता है, मास्टर के पास भेज देता है पैसा पेमेंट करके। अब पैसा देकर पेमेंट करके जो ज्ञान और जो शिक्षा दीक्षा ली जाएगी वो तो खरीदा हुआ शिक्षा दीक्षा है भाई। ये शिक्षा दीक्षा वैदिक परंपरा तो ये रही है कि शिक्षा दीक्षा कोई खरीदी नहीं जाती है, वो तो अपनी परंपरा से स्वतः प्राप्त होनी चाहिए। अब आज उस परंपरा को नहीं देखा जाता। हिंदू के बच्चे मुसलमान टीचर से पढ़ते हैं, परंपरा कहां कायम रहा वहां? बोलो, मुसलमान के बच्चे हिंदू के टीचर से पढ़ते हैं, तो वो परंपरा कहां रही? वो तो सब उधार के हो गए, खरीदी गई होगी। तुमने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, तो तुम्हारी परंपरा की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई ना, परंपरा की शिक्षा दीक्षा आई है। और यही कारण है कि खरीदी हुई शिक्षा दीक्षा ही मानव को उच्छृंखल बना रही है, अनुशासित नहीं बना रहे, सभ्य और शिष्ट नहीं बना रहे। वैदिक परंपरा तो ये रही है। ज्ञानेर विवर्ति, तुम जिसको पैदा करो उसको सबसे पहले तो ज्ञान से संपन्न करो। और हम क्या करते हैं, हम जिसको पैदा करते हैं उसको धन से संपन्न करा देते हैं, कराने की कोशिश करते हैं। ज्ञान से संपन्न कराने का तो हमें कोई विचार ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे बाप ने भी हमको ज्ञान से संपन्न नहीं किया है, धन से संपन्न किया, क्योंकि अपनी कमाई सब दे के गया लेकिन अपना अनुभव नहीं दिया। अपनी कमाई तो दिया, धन तो दिया, जड़ वस्तु तो दिया, अपना अनुभव नहीं दिया। आप में से कितने हो जो अपने नाम की सारी मिल्कियत आप अपने ही बच्चों के नाम करोगे या दूसरे के बच्चों के नाम? बोलो। सगभर तो तुम ये चाहोगे कि मरने से पहले अपने बच्चों को दोगे, यदि कदाचित स्वयं नहीं भी दिया तो मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को ही कानून अनुसार मिलेगा। लेकिन ये बताओ, तो उन सब मिल्कियत को देने वाले तुम कितने वर्षों से वेदांत सुन रहे हो और अध्ययन कर रहे हो और अनुभव कर रहे हो? कितने महापुरुषों के पास बैठकर तुमने वेदांत विद्या प्राप्त की, आत्मज्ञान को प्राप्त किया, अध्यात्म विद्या प्राप्त की? अब विचार करो कि वो किसको दोगे? दोगे? सोचा है देने की? हम कहते हैं किसी के घर में जाते हैं, सत्संगियों के घर में जाते हैं, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो बड़े सत्संगी हैं, विचारवान हैं, उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, अच्छा लगता है चर्चा करते समय। तो हम कह देते हैं कभी कभी कि भाई ये ज्ञान अपने बच्चों को भी सिखाओ, भाई जरा बच्चों को बिठाकर बच्चों को भी सिखाओ। बोले बच्चे कहां मानते हैं, बैठते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते, बच्चे मानते ही नहीं है। तो क्या कर रहे हो? तो कमजोरी किसकी है? तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा कहना न माने, कमजोरी तो तुम्हारी है, तुम्हारी बच्चे हैं, तुमको तुम्हारा कहना न माने। अलर्क मान गया और तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं मानेगा? अलर्क माना कि नहीं है? समझ में नहीं आई? मदालसा का बेटा अलर्क मान गया कि नहीं? मां के कहने से अलर्क मान गया? ऋषभदेव के बेटे नव योगेश्वर मान गए, ठीक है परसेंटेज वहां थोड़ा कम हुआ, 10% ही माने। ऋषभदेव के जो बच्चे थे, 100 बच्चे थे, उनमें से 10 नौ मान गए, 10% में से थोड़ा कम हुआ, वो तो मान गए ना। तुम्हारे भी 3-4 होंगे तो एक तो मानेगा कम से कम, मनाने की कोशिश करो। अब समाज तो इतना है कि कोई बच्चे किसी साधु संत अध्यात्म की तरफ लग जाते हैं तो बोले ये उम्र ही नहीं है, तू कहां जा रहा है, खत्म हो गए बेचारा, वो दुर्भाग्य वाला है, वो तुम्हारे संतति होकर पैदा हुआ। क्योंकि जो संपदा तुमने अर्जित की है सत्संग अध्यात्म की, वो संपदा से वो वंचित हो गया। और असली सुख देने वाली संपदा तो वही है, और तुम तो उस संपदा दे रहे हो जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम्हारे नाम पर रहने पर टैक्स देते देते परेशान हो रहे थे, वो उसके नाम पर करके तुम मुक्त हो गए, वो परेशान हो रहा है उसी को लेकर। ज्ञान है विवर्ति, वैदिक परंपरा है कि अपनी सृष्टि को खुद ही उसको परिपुष्ट करो। उस परमात्मा ने सबसे पहले हिरण्यगर्भ को पैदा किया और सारे वेद राशि और ज्ञान से उसको भर दिया, पूर्ण कर दिया। ज्ञानेर्विवर्ति जायमानम च पश्येत, और वो उसकी उत्पत्ति का साक्षी बनकर बैठ गया। जायमानम पश्येत, इसके बाद वो सब कुछ देखता रहा क्या क्या पैदा हुए। हिरण्यगर्भ को उसने पैदा किया, उसके बाद उसने और को उसने पैदा नहीं किया है। बाकी तो फिर हिरण्यगर्भ ने ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा ने फिर और को पैदा किया, और को पैदा किया, वो बैठकर देखता रहा अपने सारी सृष्टि को, अपना ही विलास है मानता हुआ देखता रहा। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाजाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।